व्याख्या भाग कविता की पंक्तियाँ। दो वंशों में प्रकट करके पावनी लोकलीला, सौ पुत्रों से अधिक जिनकी पुत्रियाँ पूतशीला, त्यागी भी हैं शरण जिनके जो अनासक्त गेही, राजा योगी जय जनक वे पुण्य देही विदेही। प्रसंग, इसमें कवि ने जनक के गुणों का वर्णन उनके पुत्रियों के गुणों के आधार पर किया है, क्योंकि संतान के यश से भी पिता यशस्वी होता है। संदर्भ, सीता तो अपने प्रियतम के साथ वन में आकर सुखी थी, लेकिन नवयौवना उर्मिला प्रियतम के वियोग में ऐसी तड़प रही थी कि उसे प्रकट भी नहीं कर सकती थी। यही उसकी महानता थी। सीता पथ के कंटक मार्ग पर साथ निभा रही थी तो उर्मिला पथ के साधना मार्ग में अंतर्मुखी हो उठी थी। निश्चय ही निम्नकुल को धन्य करने वाली पुत्रियों को पाकर राजा जनक धन्य हो गए। प्रस्तुत पद्य पंक्तियाँ हिंदी साहित्य के द्विवेदी युगीन महाकवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित साकेत से उद्धृत हैं। व्याख्या, गुप्त जी ने राजा जनक के गुणों का वर्णन करते हुए कहा है कि राजा जनक ने अपने पवित्र लीला एक तरफ निम्नकुल में जन्म लेकर उसे गौरवान्वित किया तो दूसरी तरफ रघुकुल में अपनी पुत्रियों का विवाह कर यश को बढ़ाया। इस तरह से उन्होंने दोनों कुलों को गौरवान्वित किया। यह गौरव सीता एवं उर्मिला के कारण उन्हें प्राप्त हुआ, क्योंकि राजा जनक की पवित्र शील वाली पुत्रियां सौ से भी अधिक पुत्रों से श्रेष्ठ हैं। सौ पुत्र जिस कुल के गौरव की वृद्धि नहीं कर सकते, उससे अधिक गौरवान्वित जनक की पुत्रियों ने दो कुलों को किया। ऐसी पुत्रियों को जन्म देने वाला पिता निश्चय ही श्रेष्ठ है, त्यागी है, यानी त्यागियों को भी जहाँ अपना त्याग तुच्छ प्रतीत होता है। इसीलिए त्यागी भी राजा जनक के यहाँ शरण लेते हैं, जो गृहस्थ होते हुए भी अनासक्त हैं, जो राजा होते हुए भी योगी स्वरूप में रहते हैं, उस पुण्य देही विदेही यानी सांसारिक योग वासनाओं से विमुक्त राजा जनक की जय हो। विशेष, पहला, कवि ने उर्मिला को उच्च कुल में प्रकट होने की बात कही है, कुल के अनुरूप ही पुण्यशील उन्हें बताया है। दूसरा, व्यवहारिक जीवन में पुत्रियों को अपने पिता के कुल एवं ससुराल के कुल को गौरवान्वित करना होता है। उर्मिला की व्यवहारिकता यश से पूर्ण है। तीसरा, पावनी लोकलीला में राजा जनक के विदेही होने का संकेत है, क्योंकि सांसारिकता से विमुक्त मन वाला व्यक्ति ही इस जगत में लीला कर सकता है। उसमें भी पावनी लीला निश्चय ही उसे उसके विमुक्तता का संदेश है, क्योंकि सांसारिक पुरुष संसार के कर्मों के फलों में आसक्त हो जाता है, जबकि वे अनासक्त थे। चौथा, पुत्रियां पुतशीला में कवि की आधुनिक सोच दिखलाई पड़ती है। नारी के प्रति सम्मान की भावना लक्षित होती है। यह भी दृष्टिगोचर होता है कि पुत्रियां भी अपने कुल के गौरव को ऊंचा कर सकती हैं। भारत में पुत्र के प्रति धार्मिक अवधारणा के विरुद्ध गुप्त जी यहाँ देखते दिखाई पड़ते हैं। इस तरह उन्होंने जोर डाला है कि हमें अपने पुत्रियों के विकास मार्ग पर ध्यान देना चाहिए। पांचवा, यह पद मंगलाचरण का पद है। तीन तरह के मंगलाचरण का विधान है, आशीर्वादात्मक, नमस्क्रियात्मक तथा वस्तु निर्देशात्मक। यह नमस्कारात्मक मंगलाचरण है, इसमें राजा जनक के प्रति नमस्कार भावना है। छठा, इसमें छंद गीतिका का प्रयोग हुआ है, जिसमें 26 मात्राएं प्रयुक्त होती हैं। सातवां, पूत शब्द के दो अर्थ पवित्र तथा पुत्र होने से श्लेष अलंकार है। आठवां, अनासक्त गेही तथा राजा योगी में विरोधाभास अलंकार है। नौवां, अनासक्त गेही में गीता का कर्मयोग उपस्थित हुआ है, अर्थात कर्म करो लेकिन उसके फल उपस्थित होने पर उसमें आसक्त मत हो। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचनम, मा कर्मफल हेतुर्भूमार्ते संगो असत्व कर्मणि। निश्चय ही राजा जनक गृहस्थ त्यागी थे और साथ ही राजा और योगी भी, यही विरोधाभास है। कविता की पंक्तियाँ, विफल जीवन व्यर्थ बहा बहा, सरस तो पद भी न हुए हहा, कठिन है कविते तो भूमि ही, पर यहाँ श्रम भी सुखसा रहा। संदर्भ, पहले की तरह ही। प्रसंग, इसमें कवि ने एक अर्थ में समय रहते राम की अनन्य भक्ति न कर सका, अर्थात दो सरस पद भी न लिख सका, इस पर पश्चाताप व्यक्त किया है, तो दूसरे अर्थ में कभी प्रतिभा न होने पर दुख व्यक्त किया है, तो तीसरे अर्थ में यह बतलाया है कि वाल्मीकि और तुलसी ने उर्मिला के लिए ये दो सरस पद भी क्यों न लिखे। इस पद में इन्हीं तीन भावों की अभिव्यक्ति है। प्रथम अर्थ, कवि प्रायश्चित करते हुए कहता है कि अपनी कविता के दो सरस पदों द्वारा राम की वंदना न कर सका, इस तरह उसकी कवि जीवन ही व्यर्थ रहा, इसीलिए कविता के भाव को संबोधित करते हुए कहता है, हे कविते, तेरी सत्य भूमि कठिन है, समस्त जीवन में मैं तुझे अपने अंदर उपस्थित कर कोई ऐसी रचना न कर सका जिससे राम की वंदना हो सके, पूरा कवि जीवन ही मेरा व्यर्थ गया। कवि प्रतिभा यानी कविता का वह विवेक मेरे पास नहीं था जिससे मैं राम का गुणगान कर सकता, लेकिन कवि प्रतिभा के अभाव में केवल श्रम से ही काव्य रचना करके मुझे उसी प्रकार का सुख प्राप्त हो रहा है जैसे कवि 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 प्रतिभा से रची हुई कविता से मिलता है। जैसे जल दो पग भूमि को सिंचित किए बगैर प्रवाहित हो जाए, ऐसी सार्थकता उसमें नहीं, उसी प्रकार कवि प्रतिभा विहीन काव्य में सरसता एवं रोचकता नहीं होती। प्रस्तर पर पड़ा हुआ जल पत्थर को जैसे प्रभावित नहीं कर सकता जितना भूमि को, वैसे ही कवि प्रतिभा से ही सरस काव्य निर्मित होता है, लेकिन महत उद्देश्य वाली श्रम साध्य कविता भी अपने उद्देश्य के कारण सुख प्रदान करने वाली होती है। द्वितीय अर्थ, उर्मिला को संबोधित करते हुए गुप्त जी कहते हैं, हे उर्मिले, तेरा समस्त जीवन ही प्रिय वियोग के कारण निष्फल रहा, यानी प्रिय के मधुर मिलन का आनंद तुम न उठा सकी, जीवन का जो सार है वही तेरे जीवन से दूर चला गया, पति से दूर होने के कारण तेरा जीवन वियोग में रहा, अर्थात तू एक योगिनी की भांति गृहिणी बनकर जीती रही, लेकिन तेरा प्रिय किसी महत् कार्य को पूर्ण करने हेतु तुझसे दूर हुआ, इसीलिए तू विलाप में जीवन में भी सुख का अनुभव करती रही। तृतीय अर्थ, गुप्त जी से पूर्व वाल्मीकि और तुलसी जी की परंपरा थी जिन्होंने राम का गुणगान किया, लेकिन उर्मिला के आदर्श चरित्र एवं उसके वियोग पर दो सरस पद भी न लिख सके, इसीलिए उनकी उपेक्षा के कारण उर्मिला का त्याग में उज्ज्वल जीवन निष्फल ही गया। गुप्त जी ने संकेत किया है, यद्यपि इन दोनों कवियों के समान मुझ में काव्य प्रतिभा नहीं है, लेकिन अपने परिश्रम के बल पर उर्मिला के चरित्र का वर्णन करके मैं सहज कविता का सा आनंद प्राप्त कर रहा हूँ। विशेष पहला, विफल जीवन व्यर्थ बहा से कवि का राम के प्रति अनन्य भक्ति सिद्ध होती है। कवि अपने जीवन की सार्थकता राम के गुणगान में ही समझता है, इसीलिए वह कहता है, सरस दो पद भी न हुए हा, अर्थात दो सरस पदों से कवि होने के नाते गुणगान भी न कर सका। दूसरा, काव्य शास्त्रीय दृष्टिकोण से यह सिद्ध किया है कि उसके काव्य का प्रयोजन उर्मिला के चरित्र का चित्रण करना है, जिसका वर्णन वाल्मीकि और तुलसी ने नहीं किया। तीसरा, कठिन है कविते तव भूमि ही, इसमें कवि यह बतलाना चाहता है कि यथार्थ का चित्रण कविता के माध्यम से कितना कठिन कार्य है। काव्य प्रतिभा न होने पर तो यह असंभव है जबकि उद्देश्य महत हो। यही बात तुलसी ने भी कही, करण चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघु अति मोर चरित अवगाहा। इतना ही नहीं, उन्होंने भाषा की जटिलता को भी स्वीकार किया है, आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कविता दोष गुण विविध प्रकारा, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूँ लिख कागत कोरे। इसीलिए गुप्त जी ने श्रमसाध्य अपनी कविता को ही अपने सुख का विषय माना है। तुलसी ने भी कहा है, निज कवित के ही लाग ननी का, सरस हो अथवा अतिफी का। कविता का प्रयास ही सुख का कारण बनता है। उसमें उर्मिला जैसी नारी के चरित्र को उजागर करके अपनी आधुनिकता का उन्होंने बोध कराया है। आधुनिकता अपने आप में नवीनता की सूचक है जो सुखप्रद है। चौथा, विफल जीवन बहा सरस पद के दो दो अर्थ होने से श्लेष अलंकार हैं। पांचवा, बहा शब्द की भावाभिव्यंजक पुनरुक्ति होने से पुनरुक्ति अलंकार है। छठा, पर यहाँ श्रम भी सुखसा रहा में साधारण धर्म आनंद का लोप होने से धर्म लुप्तोपमा अलंकार है। सातवां, छंद आर्या है। कविता पंक्ति, करुणे क्यों रोती है उत्तर में और अधिक तू रोई, मेरी विभूति है जो उसको भवभूति क्यों कहे कोई, अवध को अपना कर त्याग से बन तपोवंसा प्रभु ने किया, भरत ने उनके अनुराग से भवन में बन का व्रत ले लिया, स्वामी सहित सीता ने नंदन माना सघन गहन कानन भी, उर्मिला वधु ने वन किया उन्हीं के हितार्थ निज उपवन भी, अपने अतुलित कुल में प्रकट हुआ था कलंक जो काला, वह उस कुल बाला ने अस्त्र सलिल से समस्त दो डाला, भूल अवधि सुधप्रिय से कहती जगती हुई कभी आओ, किंतु कभी सोती तो उठती वह चौंक बोल कर जाओ, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा थाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप, आँखों में प्रिय मूर्ति थी भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। संदर्भ, पहले के ही तरह संदर्भ, प्रसंग, इसमें कवि ने करुण भाव का मानवीकरण किया है और बताया है कि परवर्ती कवि भवभूति आदि ने करुण का इतना उत्कृष्ट चित्रण किया है कि लगता है अब कुछ करुणा के लिए बचा ही नहीं, लेकिन कवि बतलाना चाहता है कि करुण एक भाव है जिसकी अपनी विरह वेदना के अनुरूप अपने अपने रूप हैं, इसीलिए वे करुणा को संबोधित करते हैं। उर्मिला के विरह वर्णन से पूर्व कवि राम एवं भरत के त्याग का वर्णन करता है जो उर्मिला के विरह की पृष्ठभूमि बनी। इसमें उर्मिला के पारिवारिक कार्य हेतु त्यागमय जीवन का वर्णन है, अपने से बड़ों के हितार्थ उसने अपने जीवन को विरह युक्त बना लिया, यह गुप्त जी बतलाते हैं। इसमें रघुकुल में कैकेयी के चरित्र से जो कलंक लग गया था उसमें उर्मिला ने अपने त्यागमय उज्ज्वल चरित्र से दूर कर दिया। इसमें कवि ने प्रियतम के वियोग से व्यथित उर्मिला की उन्मादिनी अवस्था का वर्णन किया है। उर्मिला का अपने प्रिय के प्रति मन में लीनता का चित्रण है उसके जिसमें उसके विरह ताप का वर्णन हुआ है। इसमें प्रेम की सर्वोच्च अवस्था का वर्णन है, उर्मिला अपने प्रियतम में लीन होकर सांसारिकता से कट गई है, इसका वर्णन करते हुए गुप्त जी कहते हैं। व्याख्या, हे करुणे, यानी कवि गुप्त जी अपने अंदर के करुण भाव को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, हे करुणे, तू इस उर्मिला चरित्र पर क्यों रोती है? इसके पहले भवभूत के उत्तर रामचरितम में तू सीता के लिए बहुत रो चुकी है, अर्थात भवभूत ने तुझे अपने काव्य में स्थान दिया है, फिर आज तू इस उर्मिला के लिए मेरे अंदर क्यों उमड़ रही है? यह सुनकर करुणा उसे उत्तर देती है कि मैं इस कारण से रो रही हूँ कि जो विरह भाव मेरी विभूति या ऐश्वर्य है उसके कारण ही भवभूति और उसके नाटक की प्रसिद्धि हुई, लेकिन कविजन उसे भवभूत की ही विभूतियों की देन कहते हैं, वास्तव में वह भवभूति संसार की विभूति नहीं है और नहीं शिव की विभूति है, वह तो मेरी विभूति है जिसके प्रभाव से वह यशपूर्ण है। पिता के वचन को पूर्ण करने के लिए राम ने अयोध्या के राज सिंहासन को भी त्याग दिया। उनके इस अपूर्ण त्याग से अयोध्यावासी प्रभावित हुए, वन में वीतरागी जीवन व्यतीत करते हुए उसे तपोवन से पवित्र कर दिया, अर्थात राम के निवास करने से चित्रकूट भी तपोवन के समान सुख देने वाला बन गया। दूसरी तरफ भरत अपने भाई के पुनीत प्रेम में निमग्न होकर राज सिंहासन को अस्वीकृत कर दिए और राजभवन में रहते हुए वीतरागी जीवन को धारण कर दिया। सीता को अपने पति भगवान राम के साथ वन में रहने के कारण सघन एवं भयानक नंदन वन को भी अपना सुख क्षेत्र मानने लगी, क्योंकि पत्नी का सुख पति के सानिध्य में ही होता है। वहीं उर्मिला ने एक वधु का कार्य करते हुए राम सीता के हितार्थ ही अपने पति को उनके सेवा में समर्पित करके प्रिय से दूर होकर वियोगिनी जीवन व्यतीत करने लगी, अर्थात अपने उपवन को वन सा बना लिया। अर्थात उर्मिला ने अपने पति लक्ष्मण को उनके साथ भेजकर अपने सुख को भी विरह के कारण दुख में बदल दिया। जहाँ एक राजा रानी कैकेयी के चलते रघुकुल जैसा अद्वितीय कुल कलंकित हो गया, वहीं उस कुल में राजवधु उर्मिला ने अपने त्याग में जीवन से लगे समस्त कलंक को अपने अश्रुजल से धो डाला। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ कैकेयी ने स्वार्थ के चलते राम को 14 वर्ष के लिए वनवास देकर रघुकुल को कलंकित कर दिया, वहीं उर्मिला ने अपने अपूर्व त्याग से उसे मिटा दिया। उर्मिला की ऐसी अवस्था हो गई है कि उसे अवधि का ख्याल ही नहीं है। जब उसे प्रिय की स्मृति तीव्र हो उठती है तो वह लक्ष्मण के 14 वर्ष लौटने की अवधि को की बात भूल जाती है और प्रिय के प्रेम में आतुर होकर उसे बुलाने लगती है, तुम आओ। किंतु जब भी वह सोचती है कि प्रिय के समय अवधि के वचन का ख्याल आता है तो वह चौंक कर उठ बैठती है और चिल्लाती है, तुम वापस चले जाओ। कहने का तात्पर्य यह है कि मानव के हृदयगत दुर्बलता के तहत वह प्रिय के आगमन का ख्याल करती है, लेकिन जैसे ही प्रिय के मर्यादा का ख्याल होता है उसकी बुद्धि सजग हो उठती है और वह फिर वापस लौट जाने के लिए बोलती है, क्योंकि वह स्वप्न में भी नहीं चाहती थी कि उसका प्रियतम कुल की मर्यादा को कुचल कर उसके पास आए। बिरहानल विदग्धा उर्मिला अपने मन रूपी मंदिर में अपने प्रियतम लक्ष्मण की प्रतिमा स्थापित करके स्वयं उनके विरह में प्रज्वलित होती हुई आरती स्वरूप बनी हुई थी। अपने आँखों में प्रिय की मूर्ति सजाए उर्मिला उसके प्रेम में इतनी तल्लीन हो गई थी कि उसे संसार के भोगों का ख्याल ही नहीं रहा। प्रिय के मिलन से जो सुख प्राप्त हुआ था उससे कहीं अधिक कष्टकर तो उसका वियोग बढ़ा। इस प्रकार उसका भारी विरह उसके लिए योग साधना से भी बढ़ गया। अर्थात जैसे योग के द्वारा योगी अपनी चित्तवृत्तियों का सांसारिक विषयों से निरोध कर अपने आराध्य में लीन हो जाता है, उसी प्रकार मेरे इस विरह ने मुझे सांसारिक भोगों से दूर कर अपने प्रिय में लीन कर दिया है। विशेष इसमें कवि ने अपने विरह वेदना के औचित्य को उजागर किया है। पहला, इसमें कवि ने अपने विरह वेदना के औचित्य को उजागर किया है और बताया है कि करुणा के कई रूप हैं। जैसे भवभूत ने सीता के जीवन में करुण रस की धारा बहाया है, उसी प्रकार उर्मिला के वियोगिनी जीवन में उतर कर भी सजीव हो उठी है। दूसरा, करुण भाव संसार व्यापी है, वह शिव की भस्म की तरह कल्याणकारी है, क्योंकि करुणा में मन विचलित होकर विकार रहित एवं सरल हो जाता है, इसीलिए वह कल्याणप्रद है। लेकिन निष्णात कवि भवभूत ने करुणा का चाहे जितना भी वर्णन किया हो परंतु करुणा निशेष नहीं हो सकती। अर्थात विरह वेदना का जितना ही वर्णन किया जाए उतना ही कम है, क्योंकि वह संसार व्यापी है। महाकवि कालिदास ने भी कहा है, स्नेहाहु किमपि विरहे ध्वंसितनस्ते त्वयोगाद इष्टे वस्तिन्युपचित तरसा प्रेम राशि भवन्ति। अर्थात प्रेम को वियोग दशा में ध्वंसशील बताया गया है, पर वास्तव में इष्ट के विरह के कारण उसके प्रति उत्तरोत्तर प्रवृद्ध होते हुए भाव से वह रास के रूप में संचित होता रहता है। तीसरा, पूर्ववर्ती महाकवियों का स्मरण करना भी भारतीय साहित्य की एक प्रमुख विशेषता रही है। इसमें करुण रस के सर्वश्रेष्ठ कवि भवभूति का स्मरण किया गया है। भवभूत ने करुण रस को ही मूल रस माना है। एको रसः करुण एव निमित्त भेदात, अर्थात एक करुण रस ही निमित्त भेद से उत्पन्न हुआ पृथक पृथक श्रृंगार आदि परिणामों का आश्रय करता है। चौथा, करुणा का चेतन रूप में वर्णन करने से मानवीकरण अलंकार का वर्णन हुआ है। पांचवा, उत्तर और भवभूति पदों द्वारा उत्तर रामचरित और भवभूति कवि के नाम का बोध होने से मुद्रा अलंकार है। छठा, यहाँ पर छाया आर्या छंद है जो शाब्दी व्यंजना का उदाहरण है। सातवां, राम के त्याग और अयोध्या वासियों के प्रति उनके प्रेम का ज्ञान होता है, साथ ही भरत के प्रति उनका प्रेम भी दृष्टव्य है। तुमसे प्यारा मुझे कौन है कातर न हो, मैं अपना भी त्याग करूं तुम पर हो। दूसरा, आठवां, वन तपो वंशा प्रभु ने किया में प्रभु श्री राम का एक महत्व उद्देश्य दिखाई पड़ता है जो उनके ही शब्दों में इस प्रकार है। बहुजन वन में है बने रिक्ष वानर से, मैं दूंगा अब आर्यत्व उन्हें निज कर से। चल दाऊक वन में शीघ्र निवास करूंगा, निज तपोधनों के विघ्न विशेष हरूंगा। उच्चारित होती चले वेद की वाणी, गूजे गिरिकानन सिंधु पार कल्याणी। नौवां, राजभवन में भी भरत अपना जीवन वीतरागियों सा व्यतीत करते हैं, इसका चित्रण गुप्त जी ने किया है। नंदगांव करिपरन कुटीरा कीन निवासु धर्मधुर धीरा, जटाजूट सिर मुनि पर धारी, मैखनी कुश संथारि सवारी। असन बसन बासन वर्तने मा, करत कठिन ऋषि धर्म सप्रेमा। भूषण बसन भोग सुख भूरी, तब तक वचन तजे तिन तूरी। चौथा, दसवां, अवध को अपना कर त्याग से में लक्षणा शब्द शक्ति है, क्योंकि अवध से तात्पर्य अवध निवासियों से है। ग्यारहवां, अवध को अपना कर त्याग से में अर्थ के विरोध का आभास होने से विरोधाभास अलंकार है। बारहवां, वन तपो वंशा प्रभु ने किया में वन शब्द की सार्थक और निरर्थक आवृत्ति होने से मक अलंकार। वन तपो वंशा में साधारण कर्म का लोप होने से धर्म लुप्तोपमा अलंकार। तेरहवां, भवन में वन का व्रत ले लिया में अर्थ के विरोध का आभास होने से विरोधाभास अलंकार, और वन शब्द की निरर्थक सार्थक आवृत्ति होने से यमक अलंकार है। चौदहवां, इस छंद में उर्मिला ने अपने जीवन को त्यागमय एवं उसके चरित्र को सीता से अधिक उज्ज्वल बतलाया है। पंद्रहवां, नारी जीवन की पूर्णता पद के सानिध्य में ही होती है, उसका सर्वस्व प्रति होता है, उसी में उसका सुख निहित होता है, इसका वर्णन रहीम ने भी कहा है। कहा करूं बैकुंठले कल्प वृक्ष की छा, रहीमन ढाक सुहावने जो प्रीतम गलबा। तुलसी ने भी सीता के राम के साथ वन में सुखपूर्वक रहने का वर्णन किया है। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेता, जिम बासौ बस अमरपुर सच जयंत समेता। सोलवा, नंदन माना सघन घन कानन में दोष को गुण मानने से लेस अलंकार, और सघन गहन में एकार्थवाची शब्दों की आवृत्ति का आभास होने से पुनरुक्त वदाभास अलंकार है। चौथा, व्याघात अनुप्रास भी है, छंद आर्या ही है। सत्रहवां, कुल कलंक को हटाने के कारण उर्मिला का चरित्र उज्ज्वल हो गया है, इस प्रकार कवि ने नायिका प्रधान गुण का समावेश किया है। इसमें छे का अनुप्रास अलंकार भी है, विप्रलंब रस भी है। ये भाग यहीं पर समाप्त होता है।